नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के एक लेख के बारे में, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीयता। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी का हिंदी क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण और वैचारिक आधार तैयार करने में अहम भूमिका थी। वे एक महान पत्रकार थे, महान नेता थे, अपने समय के क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से गहरे से जुड़े हुए थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन सब के साहित्य को उन्होंने अपने पत्र में स्थान दिया और सांप्रदायिक दंगों में वे शहीद हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह लेख पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही लिखा था। 21 जून 1915 के साप्ताहिक प्रताप में प्रकाशित हुआ था और उस समय जिस तरह का युद्धोन्माद था, राष्ट्रीयता और जातीयता, राष्ट्रीयता और धार्मिकता, राष्ट्रीयता और सामाजिकता के बीच जो फ़र्क होता है, उसको भी वे इस माहौल में साफ साफ देख पा रहे थे। आज भी राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में एक विचार का मुद्दा बना हुआ है। संकीर्णता राष्ट्रवाद के साथ जुड़ती जा रही है, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, यहाँ तक कि जातियों के साथ भी राष्ट्रीयता को जोड़ा जाने लगा है। ऐसे में गणेश शंकर विद्यार्थी का ये लेख हमारे सामने उस व्यापक राष्ट्रीयता को प्रस्तुत करता है जो साम्राज्यवाद विरोध के साथ जुड़ी हुई थी, जो अपने समय के सवालों को उठाती हुई मानवता के साथ जुड़ी हुई थी। तो प्रस्तुत है दोस्तों राष्ट्रीयता। देश में कहीं कहीं राष्ट्रीयता के भाव के समझने में गहरी और भद्दी भूल की जा रही है। आए दिन हम इस भूल के अनेकानेक प्रमाण पाते हैं। यदि इस भाव के अर्थ भली भांति समझ लिए गए होते तो इस विषय में बहुत सी अनर्गल और अस्पष्ट बातें सुनने में ना आती। राष्ट्रीयता जातीयता नहीं है, राष्ट्रीयता धार्मिक सिद्धांतों का दायरा नहीं है, राष्ट्रीयता सामाजिक बंधनों का घेरा नहीं है। राष्ट्रीयता का जन्म देश के स्वरूप से होता है, उसकी सीमाएं देश की सीमाएं हैं। प्राकृतिक विशेषता और भिन्नता देश को संसार से अलग और स्पष्ट करती है और उसके निवासियों को एक विशेष बंधन, किसी सादृश्य बंधन से बांधती है। राष्ट्र प्राधीनता के पालने में नहीं पलता। स्वाधीन देश ही राष्ट्रों की भूमि है, क्योंकि पुच्छविहीन पशु हों तो हों, परंतु अपना शासन अपने हाथों में न रखने वाले राष्ट्र नहीं होते। राष्ट्रीयता का भाव मानव उन्नति की एक सीढ़ी है, उसका उदय नितांत स्वाभाविक रीति से हुआ। यूरोप के देशों में वह सबसे पहले जन्मा। मनुष्य उसी समय तक मनुष्य है जब तक उसकी दृष्टि के सामने कोई ऐसा ऊंचा आदर्श है जिसके लिए वह अपने प्राण तक दे सके। समय की गति के साथ आदर्शों में परिवर्तन हुए। धर्म के आदर्श के लिए लोगों ने जान दी और तन कटाया, परंतु संसार के भिन्न भिन्न धर्मों के संघर्षण, एक एक देश में अनेक धर्मों के होने तथा धार्मिक भावों की प्रधानता से देश के व्यापार, कला कौशल और सभ्यता की उन्नति में रुकावट पड़ने से अंत में धीरे धीरे धर्म का पक्षपात कम हो चला और देश प्रेम का स्वाभाविक आदर्श लोगों के सामने आ गया। जो प्राचीन काल में धर्म के नाम पर कटते मरते थे, आज उनकी संतति देश के नाम पर मरती है। पुराने अच्छे थे या ये नए, इस पर बहस करना फिजूल है। पर उनमें भी जीवन था और इनमें भी जीवन है। वे भी त्याग करना जानते थे और ये भी, और ये दोनों उन अभागों से लाख दर्जे अच्छे और सौभाग्यवान हैं जिनके सामने कोई आदर्श नहीं और जो हर बात में मौत से डरते हैं। ये पिछले आदमी अपने देश के बोझ और अपनी माता की कोख के कलंक हैं। देश प्रेम का भाव इंग्लैंड में उस समय उदय हो चुका था जब स्पेन के कैथोलिक राजा फिलिप ने इंग्लैंड पर अजेय जहाजी बेड़े आर्मेडा द्वारा चढ़ाई की थी, क्योंकि इंग्लैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों प्रकार के ईसाइयों ने देश के शत्रु का एक सा स्वागत किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रीयता को पूरे वैभव से खिला दिया। इस प्रकाशमान रूप को देखकर गिरे हुए देशों को आशा का मधुर संदेश मिला। 19वीं शताब्दी राष्ट्रीयता की शताब्दी थी। वर्तमान जर्मनी का उदय इसी शताब्दी में हुआ। प्राधीन इटली ने स्वेच्छाचारी ऑस्ट्रिया के बंधनों से मुक्ति पाई। यूनान को स्वाधीनता मिली और बालकन के अन्य राष्ट्र भी कब्रों से सिर निकालकर उठ पड़े। गिरे हुए पूर्व ने भी अपनी विभूति दिखाई। बाहर वाले उसे दोनों हाथों से लूट रहे थे। उसे चैतन्यता प्राप्त हुई। उसने अंगड़ाई ली और चोरों के कान खड़े हो गए। उसने संसार की गति की ओर दृष्टि फेरी। देखा, संसार को एक नया प्रकाश मिल गया है और जाना कि स्वार्थ प्रायणता के इस अंधकार को बिना उस प्रकाश के पार पाना असंभव है। उसके मन में हिलोरें उठी और अब हम उन हिलोरों के रत्न देख रहे हैं। जापान एक रत्न है ऐसा चमकता हुआ कि राष्ट्रीयता उसे कहीं भी पेश कर सकती है। लहर रुकी नहीं, बढ़ी और खूब बढ़ी। अफीमची चीन को उसने जगाया और प्राधीन भारत को उसने चेताया। फारस में उसने जागृति फैलाई और एशिया के जंगलों और खोहों तक में राष्ट्रीयता की प्रतिध्वनि इस समय किसी न किसी रूप में उसने पहुंचाई। यह संसार की लहर है, इसे रोका नहीं जा सकता। वे स्वेच्छाचारी अपने हाथ तोड़ लेंगे जो उसे रोकेंगे, और उन मुर्दों की खाक का भी पता नहीं लगेगा जो इसके संदेश को नहीं सुनेंगे। भारत में हम राष्ट्रीयता की पुकार सुन रहे हैं। हमें भारत के उच्च और उज्ज्वल भविष्य का विश्वास है। हमें विश्वास है कि हमारी बाढ़ किसी के रोके नहीं रुक सकती। रास्ते में रोकने वाली चट्टानें आ सकती हैं। बिना चट्टानों के तो कोई रास्ता बड़ा और महत्व का रास्ता नहीं हो सकता। पर ये चट्टानें पानी की किसी बाढ़ को नहीं रोक सकती। परंतु एक बात है, हमें जानबूझकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ऊटपटांग रास्ते नहीं नापने चाहिए। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। हमें क्षमा किया जाए यदि हम कहें नहीं, हम इस बात पर जोर दें कि वे एक बड़ी भारी भूल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द के अर्थ ही नहीं समझे। हम भविष्यवक्ता नहीं, पर अवस्था हमसे कहती है कि अब संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो। और यदि मान लिया जाए कि आज भारत स्वाधीन हो जाए या इंग्लैंड उसे औपनिवेशिक साम्राज्य दे दे, तो भी हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सब कुछ न होंगे। और जो ऐसा समझते हैं हृदय से या केवल लोगों के प्रसन्न करने के लिए, वे भूल कर रहे हैं और देश को हानि पहुंचा रहे हैं। वे लोग भी इसी प्रकार की भूल कर रहे हैं जो टर्की या काबुल, मक्का या जेदा का स्वप्न देखते हैं, क्योंकि वे उनकी जन्मभूमि नहीं। और इसमें कुछ भी कटुता न समझी जानी चाहिए यदि हम ये कहें कि उनकी कब्रें इसी देश में बनेंगी और उनके मर्सिये यदि वे इस योग्य होंगे तो इसी देश में गाए जाएंगे। परंतु हमारा प्रतिपक्षी नहीं, राष्ट्रीयता का विपक्षी मुंह बिचकाकर कह सकता है कि राष्ट्रीयता स्वार्थों की खान है। देख लो इस महायुद्ध को और इनकार करने का साहस करो कि संसार के राष्ट्र पक्के स्वार्थी नहीं हैं। हम इस विपक्षी का स्वागत करते हैं, परंतु संसार की किस वस्तु में बुराई और भलाई दोनों बातें नहीं हैं। लोहे से डॉक्टर का घाव चीरने वाला चाकू और रेल की पटरियां बनती हैं, और इसी लोहे से हत्यारे का छुरा और लड़ाई की तोपें भी बनती हैं। सूर्य का प्रकाश फूलों को रंग बिरंगा बनाता है, पर वह बेचारा उस मुर्दा लाश का क्या करे जो उसके लगते ही सड़कर बदबू देने लगती है। हम राष्ट्रीयता के अनुयायी हैं, पर वही हमारी सब कुछ नहीं, वह केवल हमारे देश की उन्नति का उपाय भर है। दोस्तों, ये था गणेश शंकर विद्यार्थी का एक लेख राष्ट्रीयता, किस तरह से 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ, कैसे दुनिया में राष्ट्रीयता फैली, राष्ट्रीयता के बिना क्या कोई देश संभव है। इन सब सवालों के ऊपर ये एक विचार करता हुआ लेख है, और आज हमारे सामने राष्ट्र को लेकर जिस तरह की संकीर्णताएं मौजूद हैं उसमें ये हमारी मदद करता है। विशेष तौर पे जो राष्ट्रीयता को धर्म के आधार पे जोड़ते हैं उसके लिए उसके ऊपर पूरा प्रहार करता है, और जिन भी राष्ट्रों ने धर्म को सर्वोपरि माना है, उसी की पहचान को मुख्य माना है, उन राष्ट्रों में जिस तरह की उत्पात, जिस तरह की हिंसा, धर्म के नाम पे रूढ़िवाद, तत्ववाद, अंधविश्वास, वो हमारे से किसी छुपा हुआ नहीं है। आधुनिक समाज में धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र की कल्पना करना, उसके लिए प्रयास करना, उसको क्या कहा जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।